नमस्ते श्रोताओं, होम आइसोलेशन यानी घर में अलग रहकर जो कोरोना के मरीज अपना उपचार कर रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो तो क्या करें? इसी सवाल के जवाब के साथ हम हाजिर हैं कोरोना की दूसरी हवा सावधानी है दवा में। श्रोताओं, अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो उन्हें प्रोनिंग करवा सकते हैं। प्रोनिंग अंग्रेजी का एक शब्द है और ये चिकित्सा की दुनिया में एक जाना माना तरीका है, जिसमें पेट के बल लेटे हुए मरीज को पेट के बल लेटाकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है और मरीज को सांस लेने में आसानी होती है। इससे फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रक्रिया को घर पर सुरक्षित तरीके से कैसे करना चाहिए, चलिए समझ लेते हैं। प्रोनिंग सभी कोरोना के मरीजों को करना चाहिए, लेकिन वैसे मरीज जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा 94% से कम हो गई है और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही हो, उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए अगर हो सके तो नजदीकी आशा ANM से पता करें कि क्या उनके पास ऑक्सीमीटर उपलब्ध है। घर में एकांत में रहकर कोरोना का इलाज करने वाले मरीजों को वैसे भी लगातार अपने शरीर के ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड प्रेशर, शुगर और शरीर का तापमान जांच करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी बड़ी समस्या पैदा होने से पहले ही डॉक्टर, आशा या ANM तक सही जानकारी पहुंचाकर तुरंत मदद ली जा सके। हैप्पी हाइपोक्सिया यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी उन बड़ी और गंभीर परेशानियों में से एक है जो कोरोना के मरीजों में देखा जा रहा है, और कोरोना की दूसरी लहर में इस तरह के मामले अचानक बढ़ गए हैं। सामान्य स्थिति में एक सेहतमंद व्यक्ति का ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से ऊपर रहता है। हैप्पी हाइपोक्सिया में मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आते और अचानक शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से कम होने लगता है। ऑक्सीमीटर के जरिए शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को आसानी से नापा जा सकता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होने का असर दिल, फेफड़ों, दिमाग और किडनी समेत कई अन्य अंगों पर पड़ने लगता है। प्रोनिंग की प्रक्रिया के लिए 5 से 6 तकियों की जरूरत है। पहला तकिया ऐसे रखें कि वो सर और छाती के ऊपरी भाग में रहे। 2 या 3 तकिया पेट के निचले हिस्से यानी कमर के पास रहे। तकिये के साइज के ऊपर निर्भर करते हुए आपको अंदाजा लगाना होगा कि आपको 2 या 3 या फिर 4 कितने तकिया कमर के नीचे रखना है, ताकि आपकी छाती का निचला भाग और पेट का ऊपरी भाग जमीन या बिस्तर से ना सटे। अब एक और तकिया आपको अपने पैर के पास रखना है, घुटनों के नीचे वाले हिस्से में। एक अवस्था में 30 मिनट तक रह सकते हैं। शुरुआत पेट के बल लेटने से करें। ध्यान रखें कि अवस्था में किसी भी वक्त आपका पेट जमीन या बिस्तर को ना छुए, यानी कि पेट दबना नहीं चाहिए। पेट और बिस्तर के बीच एक हाथ भर की जगह होनी चाहिए। इसके बाद दाईं करवट लेट सकते हैं और इस अवस्था में 30 मिनट तक रह सकते हैं। इस अवस्था के लिए सिर्फ एक तकिया सर के नीचे रखें। इसके बाद 30 मिनट के लिए सीधे बैठ जाएं। इसके लिए किसी तकिये की जरूरत नहीं। ध्यान रखें कि इस समय झुककर ना बैठें, जिसके चलते आपके फेफड़े में पर्याप्त ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, क्योंकि इतने देर तक एक ही तरीके से बैठे रहने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए अगर आप चाहें तो अपने सामने 4-5 बड़ा तकिया या छोटा टेबल रखकर उसके ऊपर अपने हाथों के सहारे अपनी ठुड्डी को रखकर भी बैठ सकते हैं, या फिर पीछे किसी चीज का एक टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं। इस अवस्था में भी 30 मिनट तक रहा जा सकता है। इसके बाद बाई करवट लेट जाएं, सर के नीचे एक तकिया रखकर, और इसी तरह इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, या फिर जिस भी अवस्था में आपको ज्यादा आराम मिल रहा है उस अवस्था में लेटे रह सकते हैं। अमूमन प्रोनिंग शुरू करने के बाद पहले 15 से 20 मिनट में ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में बदलाव देखने को मिल जाता है। याद रहे श्रोताओं, शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा और कमरे में नियमित हवा की आवाजाही का ध्यान न रखने से बात बिगड़ सकती है। और मरीज गंभीर रूप से बीमार भी हो सकते हैं, पर सही समय और सही तरह से प्रोनिंग करने और घर को हवादार बनाए रखने से कई जानों को बचाया जा सकता है। प्रोनिंग करते समय कुछ सावधानियों के बारे में याद रखना जरूरी है, जैसे कि अगर मरीज ने खाना खाया है तो उसके एक घंटे बाद ही वो प्रोनिंग कर सकते हैं। मरीज एक अवस्था में उतने ही देर लेटें जितना वो आसानी से लेट सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत हो तो अपनी स्थिति बदल लें। एक दिन में 16 घंटे अलग अलग अवस्था में प्रोनिंग किया जा सकता है। आराम और दबाव के हिसाब से सर के नीचे वाले तकिए और पैर के पास वाले तकियों को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वक्त पेट ना दबे इस बात का ख्याल रखें। अगर मोटापे की वजह से आपका पेट बहुत बड़ा है तो आपको प्रोनिंग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी प्रोनिंग नहीं करना चाहिए। बेहोशी, चक्कर, दौरे या रीढ़ की हड्डी में चोट या दिल की गंभीर बीमारी वाले मरीजों को प्रोनिंग नहीं करना चाहिए। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार कोरोना के नए नए लक्षणों पर और नए नए प्रभावों पर शोध कर रहे हैं, जिससे हर वक्त नई जानकारी सामने आ रही है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप तक जितना हो सके ताज़ा जानकारी पहुंचाई जाए, और अगर कोई बदलाव है तो उसके बारे में भी आपको जरूर बताया जाए। अगर प्रोनिंग करने से किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो या सांस लेने में कठिनाई बनी रहे तो देर ना करते हुए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आज की कड़ी में इतना ही। हम जल्द ही कोरोना से जुड़ी और जरूरी जानकारी के साथ फिर लौटेंगे। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हो या आप कोरोना से जुड़ी किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हो तो फोन में नंबर 3 दबाएं। धन्यवाद।
कोरोना वायरस और कोविड वैक्सीन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसी भी समय अपने फोन में दबाएं नंबर 8 1।